ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ चतुर्थ स्कंद 28वां अध्याय श्लोक संख्या 20। प्रबोधयति मा विज्ञम् व्यूषिते शोककर्षिता वर्त्मे तद्गृहमेधीयं वीरसूरपि निश्यति। प्रबोधयति मा विज्ञम् व्यूषिते शोककर्षिता वर्त्मे तद्गृहमेधीयं वीरसूरपि निश्यति। प्रबोधयति मा विज्ञम् व्यूषिते शोककर्षिता वर्त्मे तद्गृहमेधीयं वीरसूरपि निश्यति। क्षमा करें, समय कम है, अभी ज्यादा आवृत्ति नहीं करेंगे। शब्दार्थ प्रबोधयति, अच्छी सलाह देती है माम मुझको, अभिज्ञम मूर्ख को, व्यूषिते मेरे बाहर जाने पर, शोक कर्षिता शोक से दुख करती हुई, वर्तमान रास्ता एतत् यह गृह, गृहमेधियम गृहस्थी को कार्यों का, वीरसु वीरों की जननी, अपि यद्यपि निश्यति क्या कर सकेगी। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। राजा पुरंजन सोचता रहा कि उसके मोहग्रस्त होने पर किस तरह उसकी पत्नी उसे अच्छी सलाह देती थी और उसके घर से बाहर चले जाने पर वह कितनी दुखी हो जाती थी, यद्यपि वह उनके अनेक पुत्रों एवं वीरों की माता थी, तो भी राजा को डर था कि वह गृहस्थी का भार नहीं ढो सकेगी। तात्पर्य, मृत्यु के समय राजा पुरंजन अपनी पत्नी के विषय में सोच रहा था, यह दूषित चेतना कहलाती है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बतलाया है, मामे वंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठाणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में जितने जीव है वे मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे मन समेत 6 इंद्रियों द्वारा अत्यधिक श्रम में लगे हैं। जीव आखिर परमेश्वर श्री कृष्ण का ही अंश है। गुणात्मक रूप से कृष्ण तथा जीव की स्वाभाविक स्थितियां एक सी है। अंतर केवल इतना ही है कि जीवात्मा सदैव परमात्मा का सूक्ष्म कण है। मामे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, इस बद्ध जीवन के संसार में परमात्मा का अंश यह जीवात्मा अपने दूषित मन तथा चेतना के कारण संघर्ष में लगा रहता है। परमेश्वर का अंश होने से यह आशा की जाती है कि जीवात्मा श्री कृष्ण के विषय में सोचना चाहिए, किंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि जीव स्वरूप राजा पुरंजन केवल स्त्री के विषय में सोच रहा है। किसी इंद्रिय विषय में ऐसी मानसिक व्यस्तता के कारण जीव को इस भौतिक संसार में जीवन संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि राजा पुरंजन अपनी पत्नी के विषय में सोचता है, अतः इस जगत में उसका जीवन संघर्ष उसकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होगा। जैसा कि अगले श्लोक में विदित होगा कि उसे अपनी पत्नी के ही विचार में लीन रहने के कारण अगले जन्म में उनको स्त्री का शरीर धारण करना पड़ेगा। इस प्रकार सामाजिक, राजनैतिक, छद्म धार्मिक, राष्ट्रीय तथा जातीय भावों में मन को लीन रखना ही बंधन का कारण है। इसी बंधन से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को अपने जीवन काल में अपने कार्यकलापों को बदलना पड़ता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है, यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। यदि हमें इसी जीवन में अपनी चेतना नहीं बदलते तो जो कुछ भी हम सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा राष्ट्रीय कल्याण के नाम पर कार्य करते हैं वह सब हमारे बंधन का कारण बनता है। इसका अर्थ हुआ कि हमें आगे भी भौतिक बद्ध जीवन बिताना पड़ता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, मनः षष्ठाणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति। जब मन तथा इंद्रियां भौतिक कार्य में लगे रहती है तो जीवन संघर्ष करना पड़ता है और सुख के लिए संघर्ष करना पड़ता है। प्रत्येक जीवन में मनुष्य सुखी रहने के लिए संघर्ष करता है। वास्तव में इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, किंतु संघर्ष से सुख की झूठी प्रतीति होती है। मनुष्य को कठिन श्रम करना पड़ता है और जब उसे परिश्रम का फल मिलता है तो वह स्वयं को सुखी अनुभव करता है। इस संसार में कोई यह नहीं जानता कि वास्तविक सुख क्या है। सुखं अत्यंतिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यं अतीन्द्रियं, भगवद गीता में षठा अध्याय में कहा गया है। वास्तविक सुख का बोध तो दिव्य इंद्रिय द्वारा होता है, किंतु जब तक मनुष्य शुद्ध नहीं होता दिव्य इंद्रियां प्रकट नहीं होती। अतः इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए मनुष्य को कृष्ण भक्ति करना चाहिए और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तभी वास्तविक सुख मिलेगा तथा मुक्ति प्राप्त होगी। भगवद गीता में कहा गया है, शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्। जिस प्रकार वायु गंध को वहन करती है उसी प्रकार जीव इस संसार में जीवन संबंधी विविध विचारों को एक शरीर से दूसरे शरीर में ढोता है। यदि वायु किसी गुलाब के बगीचे से होकर बहती है तो वह गुलाब की सुगंध ग्रहण करती है, और यदि किसी गंदे स्थान पर होकर बहती है तो अपने साथ दुर्गंध ले जाती है। इस प्रकार जीव स्वरूप राजा पुरंजन अपने प्राणवायु को अपनी पत्नी पर प्रवाहित करता है, इसलिए उसे अगले जीवन में स्त्री का शरीर धारण करना पड़ता है। ओम अज्ञानं तिमिरांध्यस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयहं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्णपादान सहगणललिता श्री विशाखानितं स नमोऽं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भागवत के इस चतुर्थ स्कंद के इस पुरंजन उपाख्यान में भक्त प्रवर देवर्षि नारद ने राजा प्राचीन वर्ही को एक बहुत सुंदर उपाख्यान, एक कहानी के छल से आध्यात्म ज्ञान देना चाहते हैं। ये पुरंजन उपाख्यान एक सुंदर कथा है जिसमें ये पुरंजन स्वयं ये जीवात्मा है, उसी को राजा का आख्या दिया गया है, और जिस पूर्व के जिस राज्य का राजा है वो दूसरा कोई राज्य नहीं, हमारा शरीर है, हम सभी एक एक पुरंजन है, और कम से कम दूसरे किसी का नहीं तो हमारा शरीर का जा तो राजा तो है, यह हम मानते हैं। अरे बाकी कोई हमारा बात माने ना माने, एटलीस्ट आई एम मास्टर ऑफ माई बॉडी, मैं तो कम से कम मेरे शरीर का मालिक तो हूं, जब चाहूं तो बैठूंगा, जब चाहूं खड़ा होऊंगा, जब चाहूं हाथी नीचे करूंगा, ऊपर करूंगा, जैसे मैं माई मर्जी, मेरे बस में, मेरा शरीर तो मेरे बस में है, बाकी कोई पत्नी बाल बच्चे कोई ना माने बात, कम से कम मैं तो मेरा मालिक हूं, इतने तो होना चाहिए। शास्त्र बोलता है वो भी नहीं है, तू भी तेरा मालिक नहीं है। हाँ, अरे मालिक बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और कोई नहीं होता, अपना शरीर का मालिक भी नहीं नन्नो, ऐसा हो नहीं सकता। मेरी मर्जी से मैं जो मर्जी करता हूं, आप मन क्या मन क्या नहीं आऊ, आप कैसे बोलता मैं मेरा मालिक नहीं। बोले अच्छा देखो, अगर तू अपना शरीर के मालिक होता, सोच कर देखो, तो मालिक होता तो शरीर अपना बिल्कुल मेरा अंडर में है, अंडर ओनली माई अंडर, जो कुछ होता मेरी इच्छा से होता। अगर तेरे इच्छा से तेरा शरीर चलता है तो सचमुच मालिक ना, हाँ हूं, तो कौन आपने जैसे शरीर के मालिक, हम जितने यहां बैठे हैं हम सभी महाराज पुरंजन अपने पूर्व के मालिक, कोई चाहते हैं हमारे ओवर हेड में जो काला काला बाल सफेद होना, कोई चाहते हैं, किसी को पसंद होता है? लेकिन बाल को ऑर्डर दो है काले बाल, हमेशा ऐसे रहना, दिस इज माई ऑर्डर, मानेगा आपका बात, मानेगा बताओ, ये बाल ही तेरा बात नहीं मानते तो क्या मालिक है यार, जिनका तो उनको कोई माना नहीं जाता कि शरीर के पार्ट है कि नहीं, उखाड़ फेंक देते हैं, उसको कष्ट भी नहीं होता, बाल काटने से किसी को पता भी नहीं चलता, और वो इससे निर्जीव के सजीव उनका कोई सत्ता ही नहीं है, वो भी तेरे बात नहीं मानता, बाकी क्या कहें, नारियल मूंगफली ड्राई फ्रूट चुबाने के लिए कितने मन करता है, दांत को ऑर्डर दो, ए मेरी दांत हमेशा ऐसे मजबूत रहना, रहेगा नहीं मानेगी तेरे बात, सारे निकल जाएंगे, एक भला रह जाता। हाँ हम अपना बुद्धिमानी लगाते हैं, बाल सफेद हो जाने से रंग लगा देते हैं, दांत निकल जाने से प्लास्टिक दांत लगा देते हैं, लेकिन वो नहीं रहता, और ऐसे शरीर के एक एक पुर्जे पर जो चीज को हम अपना मानते हैं, अपना बात नहीं मानते, कौन नहीं चाहता हमारा शरीर सुस्त सबल रहे, लेकिन सबको पता है कितनी दवाई आयुर्वेदिक होम्योपैथिक एलोपैथिक लेना पड़ता है, कितने कष्ट, क्यों, जब तेरे मालिक हो तो ऑर्डर दो ठीक ठाक रहे, नहीं कोई मानने के लिए नहीं तेरा बात, तो फिर कैसा मालिक हो तूने, ये भी नहीं है ना, हम किसी के मालिक नहीं है, हमारा स्वरूप है, हम नौकर है, दास है, दास, और दासत्व करते ही आए हैं अभी तक, लेकिन हमको ये पता ना चला किसका दासत्व करने से हमारा सचमुच जीवन सफल होगा, हमारा दासत्व ही का कुछ मूल्य रहेगा और हम सुखी होंगे, करना तो ही है, झूठे मालिक बनने से कुछ नहीं होने वाला, मालिक हो ही नहीं तूने, तो राजा बन बैठे हैं। तो राजा पुरंजन के उपाख्यान चार अध्याय में नारद जी बड़े सुंदर भाव से व्याख्या करके इसी में कहते हैं, ये जो वर्तमान श्लोक है आप लंबे शायद सुने होंगे, मैं थोड़ा सा उपक्रम देना चाहता हूं, कई कई नए आए हैं, कि नारद जी ने बता चुके हैं पुरंजन तो पूरा राजा रानी क्या परिवार सब वर्णन करे, साढ़े हो चुका है अंतिम चरण पर आकर के बताते हैं कि अभी इतने सुख समृद्धि से राज्य संपत्ति भरा था, सुख परिवार पत्नी पुत्र पौत्र सब थे, लेकिन हटात बोलते हैं एकदा क्या हुआ, एक बार एक राजा था जवनराज, उन्होंने अपनी सेना लाया गंधर्व सेना के साथ में, और क्या किया, एक काल कन्या रूपी एक स्त्री के साथ में इस धरती पर सैर करने के लिए आया, घूमने के लिए आया, वो काल कन्या और कोई नहीं थी, कौन थी, जरा, काल कन्या कौन है, जरा समझते ना कौन है, बुढ़ापा, हाँ, उस काल कन्या को साथ लेकर के वो जो जवन सेना कौन है, आधी और व्याधि, आधी मतलब मानसिक क्लेश, व्याधि मतलब शारीरिक क्लेश। तो उन्होंने आधी व्याधि और जरा सब साथ हो करके और नाना प्रकार के रोग जॉइंट पेन ये सब जो गंधर्व सेना है सारे मिल करके जो घूमने आ रहे थे, देखे बड़े सुंदर राज्य है, चलो अटैक करते हैं। वो अटैक किए, पुरंजन के नगर के ऊपर अटैक किए। जैसे अटैक कर रहे थे बॉर्डर सीमा पर युद्ध हो रहा था, काल कन्या तो इतने सुंदरी थी, वो तो जबरदस्त जाकर के पुरंजन को आलिंगन कर डाला, बलात् रोके ना रोके, रोक नहीं सका कोई उसको, इतना पावर था उसका। हम सभी अपने शरीर के मालिक बन करके शरीर को सजाते हैं, संवारते हैं और आसपास में कितने बढ़िया सुख सुविधा का व्यवस्था करते हैं, लेकिन हमारे बस नहीं चलता। अगर बुढ़ापा आता है पता नहीं चलता कब रंग बदल जाता है, रूप बदल जाता है। प्लास्टिक सर्जरी करते करते फेल मारे तब भी ना माने, रंग रूप बदल ही जाएगा। तो इसी को कहते हैं काल कन्या आकर के बलात् आलिंगन किया उसको। आलिंगन करते ही काल कन्या के स्पर्श से पुरंजन का इतने सजाया समारा सौंदर्य धूलिसात हो गया, खत्म हो गया, खत्म, एक बार श्रीहीन हो गया। श्रीहीन मतलब चमड़ी, क्या बोलते हैं उसको, ढीली हो जाना, झुरियां पड़ जाना, चश्मा भी नंबर उतर जाना, बाल फाल बाकी की कथा तो क्या कहें। अंगंग गणितंग पड़ितंग मुंडंग दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धा ग्रच्छति गृहित्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। फिर भी नहीं जाता, अंगम गल जाता है, शरीर गल जाता है, अंग अंग अंगम गलितम पलितंग मुंडम, मस्तक तुम्हें बताया जो बन जाता है शुभ्र केसी। दसन विहीनम जातम तुंडम, मुख बिल्कुल खाली हो जाता है, पूरा एम्प्टी, और अभी बूढ़ेपन आ चुका है, अब सीधा खड़े ही नहीं हो सकते, कमर में बेल्ट बांध करके डंडा पकड़ कर चलना पड़ता है झुक झुके। इसी अवस्था में भी आशा पिंड नहीं छूटता, ये पिंड तो छूटने पर आ गया लेकिन आशा से हम छुटकारा नहीं पाए। ये भोग की आशा इतने शक्तिशाली है, मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ता, और इस आशा के साथ हमारा शरीर छोड़ दिए तब कभी भी भौतिक जीवन से छुटकारा नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी इसी को लिखते हैं, ये बद्ध जीवन में जो शरीर परिवर्तन, ये मृत्यु के समय का वर्णन है, क्योंकि राजा था, कितने सुख सुविधा किया था, अंत में बूढ़ा हो चुका है, अब मरने का समय, अब मरी मरने का समय, वो आकर के काल कन्या आलिंगन करता है और सारे सेना आग लगा देते हैं, विष्णु ज्वर आ जाते हैं, शरीर में इतने भयंकर ताप बढ़ जाता है कि कोई जैसे कोई सूखा पेड़ में आग लग जाए, वो पेड़ में कोई चिड़िया सांप रहेंगे वो रहेंगे, विकल होकर भाग जाएंगे घर में आग लगा तो। ऐसे जीवात्मा विकल होकर तड़प करके भाग जाता है, भाग कर बाहर खड़ा होकर तभी जाए प्रसन्न है, तभी सोचेगी। अब ये सोच इस श्लोक में वर्णन किया गया, पुरंजन रूपी जीवात्मा इस भयानक काल कन्या जरा और आधी व्याधि आदि सेनाओं के द्वारा आक्रमित होकर के और इतने विष्णु ज्वर रूपी ताप से, प्रबल ताप से पीड़ित होकर के कोई उपाय, कोई औषधि, कोई मंत्र आदि द्वारा कोई उपाय नहीं मिला, निराशा निरुपाय होकर के भाग कर खड़ा हुआ, जल्दी से खड़े होकर के, लेकिन जाना नहीं चाहता। अब सोचना करता है, सबसे पहले सोचा किस सोच किसको करता है, मम अहम, भाग जा करके मम को नहीं छोड़ना चाहता है। ये ममत्व में आता है सबसे एक नंबर में धर्मपत्नी, जो आधा अंग है उनके बारे में सोचती है। तीन चार श्लोक इसके बारे में देगा, सोच पत्नी के बारे में सोच से पहले होता है, हाय हाय कितने मेरे सहायता करती थी, कितने मेरा साथ, मैं जब नहीं खाती थी वो नहीं खाती थी, मेरे खाने के बाद ही खाती थी। मैं कभी डांट देती थी तो कितनी डर जाती थी। ये श्लोक में कहती है, तो जब कभी मैं कभी दुर्बुद्धि कोई गड़बड़ करती थी मुझे समझाती थी, प्रबोधय थी अविवेकम, मैं मूर्ख कभी कोई गलत काम करता था तो ओ पुरंजनी वो आकर मुझे खूब सद्बुद्धि विवेक देती थी, इस अविवेक समय से विवेक देती थी, कितनी सलाह देती थी, बढ़िया बढ़िया सलाह, ये करो वो क्या है, तुम्हारा भाई है ना, से हटो यहां से अलग कट लो। हाँ, कितने सद्बुद्धि देती थी, जो दो भाई कितने सुंदर साथ में रहते थे, जैसे आ गई तो थोड़ी दिन में अलग तो कर ही डालेगी। हाँ, बोले कितने सुंदर सद्बुद्धि देती थी, जो मैं कुछ भी गड़बड़ करती थी पैसा लेकर के माँ के बाप को देती थी, बोले ये क्या कर रहे हैं, हाँ, ये असत कर्म, तो कितने सद्बुद्धि दे करके हमको ठिकाने में लाई थी। मैं कब परदेश विदेश चली जाती थी, मेरे बिरह शोक कारण सूख जाती थी, सूख जाती थी, काला पड़ जाती थी। और मैं अभी चली जाऊंगी, मैं चला जाऊंगा छोड़ करके अकेला, वो अकेला रह जाएगी कैसे गृहस्थी संभालेगी, यद्यपि पुत्र पौत्र बेटा बेटी खूब वीर जननी है, तो सर है, सब कुछ कमी नहीं है, लेकिन मैं नहीं रहूंगा तो कैसे जिएगी, मेरे बिना उसका जीवन कैसे चलेगी। ये सोच के साथ जब शरीर को उत्क्रमण करता है, जब शरीर छोड़ता है तो ये शोक बिल्कुल काबू हो जाता है उसके ऊपर। यद्यपि इस प्रसंग में नारद जी ने पुरंजनी को विवेक रूप बुद्धि के आख्या दिए हैं, जो तथाकथित पुरंजनी थी, पुरंजन के पत्री, उसको क्या है सद्बुद्धि, और सद्बुद्धि से वंचित, बुद्धि से वंचित तो जीव कभी हो ही नहीं सकता। जीव जब मरता है तो स्थूल शरीर को छोड़ता है, स्थूल शरीर को छोड़ता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर को तो छोड़ता नहीं, लेकिन सूक्ष्म शरीर को छोड़ता नहीं मतलब सूक्ष्म शरीर में तो बुद्धि तो होता ही है, तो बुद्धि से वंचित कैसे होगा। बोलते हैं कि ये बुद्धि नहीं, ये दूसरी बुद्धि आ जाती है तभी। बोलते जो सद्बुद्धि रूपी पुरंजनी था, जो पहले विवेक रूपी पुरंजनी था, अभी वो पुरंजनी नहीं रहा, अंत में जो पुरंजनी के बाद प्रमदा जिसका नाम कहा गया, बोलते हैं वो बुद्धि की छूट गई, मतलब जब वार्धक्य आ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, बीमारी आदि व्याधि सब बुढ़ापा मृत्यु के आसपास जब आ जाते हैं, जो आपका विवेक सद्बुद्धि सब छूट जाएगा आपसे, फिर आएगा कौन, असद्बुद्धि अविवेक ही आ जाएगा, घोर आसक्ति घोर अविवेक वही आकर दबोच लेगा, सारे बुद्धि चौपड़ कुछ काम नहीं करेगा ना। ये बड़े क्रुशियल मोमेंट है, अगर जीवन भर हम प्रैक्टिस किए होंगे तब उसी समय काम में आएगा, अब जीवन भर नहीं प्रैक्टिस करेंगे तभी काम में लेंगे कभी नहीं आएगा। इसलिए यद्यपि शास्त्र में कहा गया है कि अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान के स्मरण कर लो काम बन जाएगा, तो बोले थे जीवन भर मजा करेंगे अंत में ले लेंगे याद कर लेंगे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन याद ही नहीं आएगा, याद आएंगे तो जिसे इस रंजन महाराज याद करते हैं इसे याद आएगा, जीवन भर की आवश्यक प्रैक्टिस चाहिए, पूरा जीवन भर जो किए वही रिफ्लेक्ट करेगा मरते समय में, जीवन भर जब भजन नहीं किए भोजन किए तो वही आएगा। तो इसी को कहते हैं कि अगर हम जब सुस्त सबल थे, जीवक थे, काम करने के लायक थे, तब क्या क्या किए वही सोच में आएगा। यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोको यम कर्म बंधनः, अगर यज्ञ पुरुष के लिए भगवान के लिए काम नहीं करोगे और जो भी कुछ काम करेंगे, प्रभुपाद जी ने सारे लिस्ट देते हैं, देश के लिए करो, परिवार के लिए करो, जनहित वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए करो, एनीथिंग कुछ भी करो, सारे बंधन के कारण है, छूट नहीं सकते, फिर दोबारा शरीर लेंगे, फिर वही शरीर जन्म मृत्यु जरा व्याधि वही आ जाएंगे, दोबारा छूट नहीं सकते। छूटने के लिए तो एकमात्र उपाय है, अगर शरीर में सामर्थ्य होते हुए भजन कर डालो वही आपको छुटा सकता है। इसको तो यज्ञ पुरुष भगवान के लिए काम नहीं करेगा तो बंधन पड़ोगे, केवल वही मुक्त करा सकते हैं। और ये जो सोच, इसको प्रभुपाद जी ने पहली सेंटेंस बताते लोग, ये असत चिंता है, मरते समय में शरीर निकल ही रहा है तभी भी इतने घोर दुख के सोच रहा है, किसके बारे में? वो निकले उसके लिए नहीं, पत्नी के बारे में बोलते है जो असत चिंता है। बोलिए साधारणतया होता है लोगों को, क्योंकि जीवन भर ये भगवान के गीता के श्लोक उदाहरण देकर कहते हैं, मामे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। इस जीवलोक में भगवान तो मेरे जो अंश रूपी जीवात्मा इस भौतिक जगत में आकर के क्या कर रहा है, सनातन रूप हमेशा ही करता, क्या करता है? न मन षष्ठाणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। मन के साथ छह इंद्रियां, पांच इंद्रिय और मन, ये छह मिलकर के घोर संघर्ष करते हैं किसके लिए, कैसे जीऊं सुखपूर्वक जीऊं। दो ही प्रोजेक्ट है, मरना नहीं चाहता, दुखी नहीं होना चाहता, सुखी रोहक होकर के जीना चाहता है, बस यही उसका एकमात्र लक्ष्य होता है। इसी प्रोजेक्ट लेकर के घोर संघर्ष करता है, कितने कोचिंग करता है, ट्यूशन जाता है, पढ़ाई करता है, पास करने के बाद फिर कंपटीशन लगाता है, कितना प्रकार के आपरों से पैसा लेन देन करके नौकरी करता है, नौकरी करके फिर बीवी बच्चे सब, मैंने घोर संघर्ष सुख पूर्वक जीने के लिए ये संघर्ष करता है पूरा जीवन भर, और सनातन हमेशा करता रहता है। कि ऐसे नहीं कुल मनुष्य शरीर में, बोले किसी भी योनि में आ जाए, पशु पक्षी कीट पतंग किसी भी शरीर में आ जाए, सेम प्रोजेक्ट उससे नहीं छूट पाता, प्रोजेक्ट वही है, उसी को मैनेज करता रहता है। मन षष्ठाणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करसति, करसति मतलब खींचता है, खींचता मतलब कैसे खींचता, जैसे कभी कभी देखना यद्यपि ये सांड होता, बैल होता है, कितने बलशाली होता है, बहुत बलशाली बैल होता है, विशाल शरीर उसका, लेकिन कभी कभी उसको बस में लाने के लिए उसके नाक के अंदर एक जो होता है ना छेद, बहुत लाल लाल बहुत मुलायम ये होता है, तो उसमें छेद कर डालते हैं, छेद करके इसमें कोई धातु का लोहे का कोई एक कड़ा डाल देते हैं और उसमें रस्सी लगा देते हैं। अब ये महाबलशाली बैल को छोटा से ढाई साल के बच्चा भी खींचे, बिल्कुल ओबीडियंट बनकर पीछे पीछे जाएगा, सारे बल रूप सब चौपट कुछ काम ना करे। इसी को बोलते हैं कर सती, ये खींचता है, जाना ही पड़ेगा, तेरे सारे रूप रंग बल पुरुष तक खत्म, ऐसे खींचेगा तेरा कुछ काम नहीं करेगा। इसलिए कर सती, इसे मन इंद्रिया हमको ऐसे कर्षण करता है, ऐसे संघर्ष में रहते हैं और समझ में नहीं आता, बारम्बार यही काम करते हैं, हमेशा ही करते हैं। तो इससे बचने के लिए इस मन और इंद्रियां जिस तथा कथित सुख के लिए संघर्ष कर रहा है, सुख तो मिलता तो है ही नहीं, मिलता क्या है, सुख का थोड़ा एडवर्टाइजमेंट मिलता है, प्रतीति मात्र होता है, सुख नहीं होता ना, सुख होता ही नहीं। प्रयास करते हैं, जैसे अन्य स्थान भागवत में कहा गया है, जैसे आप शरीर रूपी परिवार रूपी और पोस्ट पोजीशन रूपी भार ढो रहे हैं, कस करके इसे ढो रहे हैं, जिनका जितने बड़ा उनका इतने बड़ा भार है, हेवी वेट ढो रहे हैं, ढोकर चलते चलते परेशानी, मथा दुखता है, शरीर दुखता है, कमर दुखता है, बोलते हैं प्लीज हेल्प मी हेल्प मी। कभी कभी भगवान को भक्तों को भी पुकार कर देते हैं, अरे सर ये बड़े दयालु हेल्प करेंगे शायद, वो आ जाते हैं, सो क्या ना हेल्प, नहीं यस प्लीज मर रहा हूँ, क्या हेल्प करूँ, बस मुझे बाकी आई एम ओके, तभी दांत मैं ठीक ठाक हूँ, केवल इतना ही हेल्प है, बाकी तो मैं सब ठीक, क्या ना सर में बड़ा दर्द हो रहा है, ये बोझा तो बोझा छोड़, नहीं नहीं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसको छोड़ नहीं सकता, अरे बोझे के वजह से इतनी दर्द हो रहा है, उसको छोड़ दो, ना उसको नहीं छोड़ूंगा, अगर आप मदद करना चाहते बोझा के साथ कुछ ऐसे उपाय बता दो जिससे मेरा सर दर्द ही कम हो जाए, इतने हैवी लोड वेट। बोला अच्छा, इसको छोड़ना भी नहीं चाहता और दर्द से कम होना चाहता है ना, तब तो एक ही उपाय ना बताओ प्लीज, सर से उठाकर कंधे में ले लो। तो उठाकर उनके बात मान करके बोझा को उठाकर कंधे में ले, बोलते थैंक यू सर, आई एम रियली ऑब्लाइज्ड टू यू, सो नाइस सो हैप्पी, क्योंकि तुरंत रिलीव हो गया, हेड पेन रिलीव हो गया, इतने खुश हो जाता है, खुश होकर के थैंक यू करने के बाद ही ये पेन शुरू होता है, फिर रोने लगता है, ओ हेल्प मी प्लीज। फिर क्या हो गया भाई, अब सर तो ठीक है गया लेकिन कंधा, ये डाहिने कंधा टूट रहा है, प्लीज कोई उपाय है? कोई नहीं, यहां से उठा के लेफ्ट कंधा में ले लो, लेफ्ट में। ओ सो नाइस, सो हैप्पी, माई गॉड। आप लो, अब ऐसे सुख प्रकाश करते करते ये कंधा टूटेगा, पूरा नहीं होने देगा, तब शुरू हो जाएगा। हाँ, एक मेडिसिन छूटा तो दूसरी शुरू हो। अब आप लोग बड़े बड़े बूढ़े लोग जानते बाई पास, कितने पास करेंगे? अब फिर आ जाता, फिर रोने लगा। तो ऐसे ही जो संसार के जिस सुख करके जिसको मानते हैं, सचमुच सुख नहीं, दुख का परिवर्तन है, एक दूसरे रूप में ट्रांसफर ऑफ मिजरी। इस स्थान से हटकर वहां आ गया, उसी को सुख मानते, जो ट्रांसफर पीरियड है उसी को सुख मानते हैं, बस फिर वही हावी हो जाए। उसी को मान करके उसके लिए ना जाने कितने जीवन, कितने जन्म बिता चुके हैं, कितने जन्म जन्म से वही कार्य में लगे हैं, वही कार्य में करते हैं, कोई रस नहीं फिर भी लगे हैं। तो इसलिए नारद जी ने इस राजा पुरंजन को ये कहानी देकर सुनाते, बोले अब तो समझ जाओ, कितने सारे व्यवस्था किया था, सेना था, राज्य था, पत्नी थे, पुत्र थे, पुत्र कहां गया, सुरक्षा था, परपटा था, कुछ नहीं, सब धूलि साथ हो गया, आग लग गया, मर गया। अभी शोक में पड़े हो और जाते समय में जिसके बारे में सोचेंगे, यही तो फॉर्मूला है भगवान ने, एक पक्का फॉर्मूला दिए हैं, जम जम वापी स्मरण भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्ते ये सदा तद भाव भावित, वही भाव को प्राप्त होगा, अन्ते जो मति सो गति। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भजन करो, साधन करो, मरते जान ले है। तेरे कितना भजन साधन करता है, कितने व्रत नियम करता है, कितने कार्तिक दामोदर व्रत करता है, पता चलेगा फाइनल एग्जाम में, तब पता चलेगा टाइम ऑफ डेथ। अब पुरंजन क्या क्या नहीं किया था, अब जब धूलिसात हो गया, आग लग गया, जल रहा है, भाग करके अब खड़े होकर रो रहा है पत्नी की याद कर। ये शरीर जब छोड़कर, प्राण जब शरीर छोड़कर दूसरे शरीर की ग्रहण करता है, शरीर उत्क्रामणम, उसी 15 अध्याय भगवद गीता में भगवान कहते हैं जद जद, जब ये जीवात्मा ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर को जाता है, वो फॉर्मूला कैसे बताते हैं, वायुर्गंधा निवासयात, ये उत्क्रमण कैसे होता है, क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा तो जाएगा, और जाते समय में जिस बगीचा के ऊपर जाएगा, मतलब जिस सोच विचार में जाएगा, वही भाव वही रूप ग्रहण कर लेगा, है ना। प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिए, जब गुलाब के बगीचे के ऊपर वायु चले जाए, क्या रोज सेंट है, और सिटी नाली के ऊपर अगर आएगा, क्या गंध है। ठीक इसी प्रकार जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर निकलते समय जिसके सोच विचार करेगा वो ही बन जाएगा। अब पुरंजन का अभी थोड़ी एक दो श्लोक के बाद में आ जाएगा, वो चला तो गया, निकल गया, निकलते समय में ये जो स्त्री के बारे में इतनी गंभीर चिंता, तुरंती विदर्भ नगर में कुमारी एक स्त्री बनकर के पैदा हो जाएगा, जो जैसे बने। अरे भरत महाराज जैसे भाव स्तर के भक्त भी मृग चिंता करके हिरण बन गए, इतने बड़े स्थिति के भक्त थे, लेकिन फॉर्मूला तो एक ही है भक्त का भक्त के लिए, इसलिए पार्शियलिटी नहीं करते भगवान, फॉर्मूला एक ही है भक्त के लिए, भगवान को चिंता करना चाहिए था, नहीं किया तो मैं क्या करूं, फॉर्मूला तो लग गया उसमें, हिरण को चिंता के हिरण बनना पड़ा, नहीं छूट मिलेगा उसमें, है ना। नहीं अवश्य ऐसा शास्त्र में भगवान ने आश्वस्तता दिए हैं, अगर आप जीवन भर भक्ति किए हैं, अंत समय में किसी कारण में गला चोक हो गया, बड़ी भयंकर पीड़ा हुआ, भगवान को याद नहीं कर पाए, तो भगवान कुछ डिस्काउंट देते हैं, खुद आकर कुछ संभाल लेते हैं, फोन कर बोल देते हैं यार ये हमारे आदमी है उसको पास कर लो, थोड़ा हाँ करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं करते। अगर आप सचमुच किए हैं ईमानदारी से भगवान के लिए, तो वो इतने बेवफादार नहीं है, बेवफादार ना क्या बोलते हैं हिंदी समझ में, मतलब बेईमान नहीं है भगवान, वो मदद करते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण मनुष्य शरीर में सबसे कीमती टाइम कौन सा है, सबसे पावरफुल एंड सबसे मूल्यवान टाइम? जवानी है ना? नहीं, वही जवानी अगर भगवान के लिए आप लगा दे तो भगवान कतई कदापि उसको भूल नहीं सकते। आप बूढ़े पन मरते हैं, कुछ भी कर लो, बोले ना वो मुझे अपना सबसे मूल्यवान समय दिया है, बुढ़ापे में जाकर कुछ कर, मैं तो उसको वो जवानी मुझे दिया है, लेकिन हम लोग कहें जवानी भोग लूं, बुढ़ापा में देखेंगे। ये अभी भजन गलत, वार्धक्य एखन उपाय विहीन ताते दिन अकिंचन। बुढ़ापा में आप तो कोई उपाय भी नहीं दिखता, गवर्नमेंट भी निकाल दिया, प्राइवेट कंपनी भी निकाल दिया, घर वाले तो उसे गाली देते हैं, बुढ़ा खांसता रहता है, रात भर सोने भी नहीं देता, जा ओल्ड एज होम में, क्या करूं, ना शरीर ना संबंधी ना इंद्रिया, नोबडी हेल्प्स। तब बोलते हैं ठाकुर अब मुझे मेंटेनेंस की व्यवस्था कर दो, हम सेवा करेंगे आपके। जब किसी के काम के नहीं रहा तब भगवान की भक्ति करने के लिए आते हैं। हाँ, धोखा देने के लिए भगवान ही बसते हैं ना, वो क्या करेंगे, सारे संसार में जीवन भर धोखा दिए, अब सभी हमको निकाल दिए, कोई पूछते नहीं, तो वो अंत में भगवान बोले धोखा देने के लिए, उनकी धोखा देंगे, है ना? नहीं, उनके पास आ जाते हैं। वार्धक्य एकान उपाय विहीन, आप निरुपाय होकर बुढ़ापे में पूरा बायोडाटा फॉर्म फिलअप करके लिख रहा है, पूरा लिख रहा है, अब प्लीज मुझे लीजिए, नहीं ऐसा नहीं होता है। ये देखते देखते समय बीत जाएगा। उदित तपन हईले अस्त, दिन गेला बोली हईब व्यस्त, तबे किना एबे आलस हैया ना भज हृदय राजे। ये दिन देखते देखते शाम हो जाएगा, उदित तपन होइले अस्त, जब अस्त हो जाएगा, हाय हाय इतने सारे काम बच गया, मैं कुछ कर नहीं पाया, क्या करूं क्या करूं, शाम हो गया, केवल व्यस्त होते रहेगा, अनुतप्त होते रहेगा, तड़पते रहेगा, लेकिन चला गया समय। समय किसी को टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो। देखते ही देखते हम तो खुशी में मजा में, अब चला गया टाइम, शाम हो गए, दिन गेले बोली होइ व्यस्त, बीत रहा है समय, हमको पता भी नहीं चल रहा है कैसे बीत जा रहा है। तो तभी केवल हाथ में कुछ नहीं रहेगा, व्यस्तता रह जाएगा, तो इसलिए आलस्य मत करो, अभी लग जाओ, जो भी थोड़ा बहुत शक्ति सामर्थ्य है पूरी कसर से पूरी दम से लग जाओ। तबे कि ना वे आलस हैया नाभज हृदय राजे, जो आपके हृदय के सचमुच राजा है, जो आपके सचमुच मित्र है, सुहृद है, बाकी दुनिया में जितने मित्र है शरीर के संबंधी भले हो सकते हैं, हृदय के संबंधी हृदय के मित्र तो एकमात्र वही है जो किसी भी अवस्था में आपको छोड़ता नहीं है, आपके साथ है, परमात्मा रूप में भगवान हमेशा साथ है, हमेशा साथ हैं। कभी कभी विचार आते क्यों हमारे पीछे पड़ते हैं यार, जब बिल्ली बने, कुत्ता बने, कीड़े बने, मकड़े बने, कुछ भी बने, परमात्मा आपके साथ है, भगवान अरे कोई काम ही नहीं, मेरे पीछे पड़े हैं, थोड़े तो कुछ छूट दो, नहीं क्यों हमेशा साथ में रहते हैं, इसीलिए साथ में रहते हैं भगवान ने, क्योंकि हमेशा आशा रखे हैं, इतने कृपालु हुए, इतने कृपालु, हर प्रकार के कष्ट हमारे लिए सहन करते हैं भगवान, हम कीचड़ में गंदे में कीट बनकर जाएंगे, भगवान हमारे साथ सही रहेंगे, वो कीड़े बनकर कीड़े के साथ रहेंगे, इतने दुर्गंध नाली में क्यों, हमारे लिए भगवान क्यों इतने कष्ट उठाते हैं, केवल एक ही होप उनका है, इतने कृपा से, क्योंकि भगवान का शरीर केवल कृपा के बना हुआ है, दूसरे को इंग्रेडिएंट है ही नहीं, इतने कृपालु है, कृपा के कारण इतने कष्ट इतने गंदे को भगवान स्वीकार करते हैं, आशा एक रहते हैं, क्या आशा, ना कभी तो मेरे ओर उन्मुख होगा, देखेगा एक बार मुंह मोड़कर मेरे देख तो लेगा, वो देखेगा तो मैं खींच लूंगा उनको, वो नहीं आ पाएगा, बूढ़ेपन दुर्बल हो गया, विकल हो गया, आने की शक्ति नहीं, लेकिन केवल मेरे ओर मुंह तो एक बार मोड़ तो ले, फिर देखो मैं क्या करता, एकमात्र उन्मुखता हो जाए, भगवान हमारे साथ हैं, लेकिन हम मुंह मोड़कर बैठे, पीछे भगवान को रखे, हरि विमुखन, हरि से विमुख होकर हमेशा जिंदगी बिता दिए, लेकिन किसी भी शरीर में किसी भी समय में अगर हम एक बार क्षण भर के लिए हरि की ओर मुंह मोड़ दिए, अगर हरि वहां एब्सेंट प्रेजेंट ना होते तो फिर कौन उनको उठाए, तो इसलिए बोलते ना उस समय अगर मैं ना होता तो मेरे बदनाम हो जाएगा, मैं उनके सुहृद हूं, मैं उनके उद्धारक हूं, मैं उनके हितैषी हूं, ये मेरे पोजीशन फिर खराब हो जाएगा। नहीं, इसीलिए 24 आवर हमेशा हर प्रकार स्थिति में, हर जोनी में, हर जीवन में भगवान साथ में रहते हैं, केवल एक ही काम के लिए, हमको बचाने के लिए। हम एक बार बचाने के लिए उनके राजी हो जाए। भगवान राम तो ऐलान कर दिए, सकृत एवं प्रपन्नायम तब अस्मि इति जाचते। बोले सकृत मतलब एक बार भी कोई दिल खोल करके हाथ उठाकर बोल दे हे प्रभु मैं आपका ही हूं, दैट्स इट, जस्ट वंस। सकृत एव प्रपन्नायम तब अस्मि, मैं आपका हूं। एक बार कोई दुख में दर्द में पड़कर एक बार बोल दे, भगवान बोलते मैं व्रत लिया हूं, व्रत एवं व्रतंग मम, ये मेरे व्रत में है, मैं खुलकर बोलता हूं। कोई अगर गड़बड़ी करता मेरे ऊपर किस कर सकते, खुलकर भगवान सबको बोलते ये मेरा व्रत है। क्या व्रत है? एक बार तो जीव दुख में समस्या पड़ करके मेरा करके मेरा बन जाएगा, और मैं अभयम ददामि तस्मै सर्वदा एतद् व्रतं मम, सदा सर्वदा के लिए उनका अभयदान कर दूंगा। भगवान राम की संकल्प व्रत है सदा के लिए, फिर कभी उनका जीवन में भय नहीं आ सकता। हम निर्भय होने के लिए ना जाने क्या 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 करते हैं, लेकिन एक बार भगवान को जाकर बोलते हैं प्रभु मैं आपका हूं। माता जी ने सुनकर तुरंत यही कर डाले ऑन द स्पॉट। ऐसा नहीं, हम लोग तो सब डिवोटी सो कॉल्ड हैं, दिन में दो तीन बार तो कम से कम, एक बार तो मंगलाती समय में कि दो बार, कभी तो एक बार तो मंदिर जाते हैं, प्रणाम करते हैं, करते हैं ना, कोई कोई दो तीन बार करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है हम सभी प्रणाम तो करते हैं लेकिन प्रणाम करना नहीं आता। अभी तक हम प्रणाम अभी तक किए ही नहीं ना, पता ही नहीं कैसे करते, क्योंकि भागवत में लिखा है प्रणाम है दुख समनम तम नमामि हरिं परम। इस हरि को प्रणाम करो, एक बार प्रणाम से दुख खत्म, डिलीट हो जाएगा। डिलीट बटन दब जाए तो रहेगा क्या? हार्ड डिस्क खाली हो जाएगा, तो होता क्यों नहीं? हम तो दंडवत प्रणाम है, पता नहीं कितने साल से करते आए हैं, दो दिन बाद तीन दिन बाद एक्सरसाइज करते हैं, प्रणाम नहीं किया। अगर प्रणाम करते दुख समन हो जाता, ये भागवत वाक्य नहीं कि एक बार हाथ उठा करके भगवान मैं आपका हूं, ऐसे भले हम ड्रामा की तरह जैसे रोल करते हैं, रोल कर देंगे, लेकिन सचमुच नहीं किए। आप सभी ने, हम सभी अपने आप को, दूसरे किसी मत बोले शर्म लगेगा, अपने आप को थोड़ा पूछो, जब हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, उनके रोते हैं, उनके सामने प्रणाम करते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं प्रभु मैं ऐसे करूं ऐसे करूं, हमेशा भगवान को जो कहते हैं और उनसे तो हमेशा मन में रहते हैं प्रभु मैं आपका हूं उनका भी हूं, जरूर ये बात मन में रहता है कहीं ना कहीं से, आपका तो हूं लेकिन प्रभु उनका भी तो हूं। यही कंडीशन के साथ हमेशा करते हैं, भगवान बोलते नो, सकृत मतलब केवल मुझे, माम एकम शरणं व्रजः अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मुक्षयिष्यामि मा शुच। फिर डरने का कोई बात ही नहीं, सोचने का कोई बात नहीं, सुख करने का तो मुझे शरण किया, भगवान को नहीं करते, प्लस कुछ लगाते हैं, अकेले भगवान के नहीं करते, यही हमारा कमी रह जाता। कब वो समय आएगा, इसी को प्रैक्टिस करना है, इस भजन आदि करके शुद्ध हो जाएंगे, एक बार सच्चाई में केवल भगवान को हम शरणागत हो जाएं और किसी के लिए नहीं। कुंती देवी ने, यहां स्त्री की बात आती है, याद करते हैं पुरंजन महाराज, वो स्त्री शरीर प्राप्त हो गया, स्त्री को भी पुरुष शरीर प्राप्त हो जाता है, जो जिसी का चिंता करेगा, जो इस शरीर का चिंता वही जाएगा, वही बंधन मिल जाएगा। कुंती महारानी, पति चले गए हैं वैधव्य विधवा अवस्था में, पांच पांच तीन अंक थे जो भी, पांच पुत्र के जननी, कितने प्रकार के कष्ट मिला उनको, अंत में भगवत कृपा से जब सारे कष्ट नाश हो गए, उनके बेटा राजा बने, युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती सम्राट बने, भगवान सब कुछ कर नर के बोले बुआ अब जाऊं, कुंती रो पड़ी बोले नहीं आप चले जाएंगे, कैसे चले जाएंगे, जब हमारा दुख था तब हमारे साथ थे, जैसे सुख आया आप निकले, तो ये सुख मुझे नहीं चाहिए, जो सुख आपको हमसे अलग कर देता है वो सुख हम नहीं चाहते हैं, जो दुख हमको आपके साथ करता है दुख हमको चाहिए, आई एम वेलकमिंग दैट दुख, इस दुख में स्वागत करता हूं जिस दुख में भगवान हमारे साथ रहे, ये सुख को त्यागना चाहता हूं जिस सुख में भगवान हमसे दूर हो जाए, इसलिए कुंती महारानी दुख मांगती है, मांगते मांगते यहां तक कहती है बोले प्रभु बस आप चाहते हैं मैं कुछ प्रार्थना, मेरे प्रार्थना तो केवल यही है ना, तो मुझे मेरे जो पिताजी घर मैहर ना नहर क्या बोलते हैं मायके वाले की, अरे मेरे कोई संबंध रहे छिंदी छिंदी बोले उनको भी संबंध काट दीजिए मायके वालों के साथ, और जो सासुर उनको क्या बोलेंगे ससुराल के साथ ही संबंध काट दीजिए, दोनों की ओर संबंध काट दीजिए, मेरे बेटों से भी संबंध काट दीजिए, बोले ना उनसे भी नहीं किसी से संबंध सब काट दीजिए, अरे तुम्हारे भाई वसुदेव है मेरे पापा है, भगवान कहेंगे तो क्या करते हैं, और तुम्हारे बेटे तो मेरे परम भक्त है, बोले हाँ सब है ठीक है ना, तो कुंती महारानी के दोनों तरफ से संबंध कितने उत्कृष्ट कितने उच्च कोटि के थे, पिताजी के घर तो साक्षात भगवान की पिता वसुदेव हैं, इतनी बड़ी उच्च पद था वसुदेव जी के, है ना, नहीं भगवान को लाने के लिए इस धरती में कितने कष्ट वसुदेव ने सहे, जन्म से पहले जेल में गए क्या क्या नहीं किए, कितने बड़े भगवत सेवक है वसुदेव, उनसे भी नाता तोड़ना चाहता है, और यहां तो पुत्र है, पांच पांच पुत्र एक से एक भगवान के भक्त हैं, भगवान के साथ इतने संबंध है पांडवों का, पांडव भगवान तो अपने घर गृहस्थी छोड़ करके यहीं पड़े रहते हैं, इतने लगाव है, लेकिन कुंती देवी कहती है कि ना तुम्हारे उनसे संबंध को रखिए, उसको भी छोड़ दीजिए पूरा कर लीजिए, ये संबंध भी नहीं चाहिए ना तो वो संबंध भी, दोनों ओर से संबंध काट दीजिए, फिर क्या न केवल आपके साथ संबंध जोड़ दीजिए, बस दैट्स इट, यही होना चाहिए हमारा प्रयास, जब तक किसी ना किसी के साथ संबंध रहा उसके बारे में थोड़ा सा सोच विचार किए बस वही बंद गए, तो इसलिए संसार में रहते हुए इस ज्ञान को पा करके प्रैक्टिस करते करते अंत तक जब सारे संबंध को कट देंगे, लिंक सब खत्म कर दें, कोई नो लिंक, केवल एक ही लिंक भगवान के साथ कर दे, संबंध तो करना ही है, सारे संबंध को तोड़ करके केवल भगवान से साथ जोड़ दें तभी हमारा सफलता होगा। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।